दूसरा निबंध अंधेरे में तथा मुक्तिबोध की अन्य कविताएं एक अंतःसूत्र विष्णु खरे। चूंकि आलोचक चीजों को समझना चाहता है और उन्हें समझाने में सहायक होना चाहता है, अतः वह एक व्यवस्था प्रिय व्यक्ति होता है, या कह लें कि एक गणितज्ञ होता है जो परिणामों से कारणों की उल्टी यात्रा करता है। अन्य बातों के अलावा वह रचनाकार की कृतियों में एक सर्वनिष्ठ थीम, मोटिव या मोटे तौर पर कोई बुनियादी समानता या उनका अभाव खोजता है जो न केवल उन कृतियों को समझने में मदद करे बल्कि रचनाकार के भीतरी विश्व की व्यवस्था या अव्यवस्था को भी उजागर कर सके। यह आवश्यक नहीं कि किसी रचनाकार की समस्त रचनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों और उनमें सुबद्ध विकास सरीखी कोई चीज देखी जा सके। युवा एड्स तथा बूढ़े एड्स की रचनाओं में कितना फर्क है, किंतु इस तथ्य से भी छुटकारा नहीं है कि एक ही रचनाकार की कृतियाँ एक ही व्यक्ति की होती हैं और बहुत कुछ बदलने के बाद भी इन सब में कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं बदलता, बल्कि समय के साथ साथ और गहरा बैठता जाता है। कविता में तथा कवि में जब भी बदलाव आता है तब वह न तो अनायास होता है और न पिछले संसार से असंबद्ध। कविता के जितने दौर आए हैं उनसे जाहिर है कि उन दौरों में लिख रहे कवि बदलते हुए समय में बदलते हुए स्वयं के प्रति सर्वथा जागरूक थे। पल पल परिवर्तित वेश अच्छी कविता का मानदंड नहीं माना जा सकता, किंतु यह भी सत्य है कि ऐसे कवियों में जो स्वयं को नहीं बदलते अधिकांश घटिया हैं। ईमानदार कवि के लिए बदलाव मुकरना नहीं जागरूक उत्तरदायित्व का भाव है। हिंदी की नई कविता में अपने कृतित्व के प्रति सर्वाधिक जागरूक मुग्ध नहीं कवि मुक्तिबोध थे। चांद का मुंह टेढ़ा है कि कविताओं को जिन्होंने सरसरी दृष्टि भी दी है वे इससे परिचित होंगे कि वे एक गहरे जिम्मेदार प्रतिबद्ध या एंगेज्ड कवि की रचनाएं हैं। यदि मुक्तिबोध में यह नहीं होता और सिर्फ एक शब्दाडंबर होता तो वे हमारे युग के सर्वाधिक बड़बोले कवि होते, किंतु उनमें यह प्रखरता तथा भयावह करुणा है जो उनके भावुकतम क्षणों कल्पना की असंभवतम उड़ानों पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने देती। उनके समक्ष कविता में उनके उद्देश्य इतने स्पष्ट हैं कि उनकी समस्त कविताएं एक बड़ी कविता लगती है। मुक्तिबोध आज के महाभारत के सात्यकी तथा संजय दोनों हैं और उनकी कविताएं इस युद्ध को विभिन्न कोणों तथा स्थितियों से दिखाने वाले प्रत्यक्षदर्शी ब्यौरे हैं। मुक्तिबोध की कविताओं की थीम एक ही है, संघर्ष व्यक्तिगत तथा विराट स्तरों पर। चांद का मुंह टेढ़ा है कि 28 कविताओं में 14 स्पष्टतः उनके बाह्य संघर्ष की कविताएं हैं। यद्यपि यह सीमांकन अन्यायपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि मुक्तिबोध में व्यक्ति का विराट स्वरूप धारण कर लेगा। इन कविताओं में अचानक सहसा इतने में ही एकाएक आदि शब्द व्यर्थ नहीं है, यह न पाठक जानता है और न स्वयं कवि। ऊपर जिन कविताओं को मुक्तिबोध की बाह्य संघर्ष की कविताएं कहा गया है उन्हें इस तरह के विभाजन में रखना सुविधाजनक नहीं है, तर्कसंगत आवश्यकता है, क्योंकि इनके एक साथ अध्ययन से मुक्तिबोध की कविता की कसौटी यूनिटी साफ दिख पड़ती है। कविता में यूनिटी शिल्प की भी हो सकती है और अभिव्यक्ति की भी, यानी हो सकता है कि विभिन्न विषयों पर लिखी गई कविताओं का शिल्प एक सा ही हो अथवा शिल्प के साथ प्रयोग किए गए हों किंतु विषय एक ही रहे। मुक्तिबोध की सारी कविताओं में भाषा एक सी ही है, इसलिए शायद असहमति नहीं होगी। वे भाषा को एक इंटेंस तथा परिष्कृत स्तर पर इस्तेमाल करते हैं और उनकी कविता के प्रभाव में भाषा का योगदान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शमशेर तथा माचवे का शिल्प बाहुल्य भी उनकी कविताओं में नहीं है, किंतु इससे अनगढ़ शिल्प का दयनीय मूढ़ आरोप उन पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह सब जानते हैं कि अपनी कविताओं को उन्होंने कितनी बार संवारा है, सुधारा है। दरअसल मुक्तिबोध अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त एक शिल्प पर पहुंच चुके थे और उनकी कविता के लिए शिल्पाक्रांत लटकों की आवश्यकता नहीं रह गई थी, किंतु भाषा अथवा शिल्प की यथावत्ता ही उनकी कविताओं को यूनिटी नहीं देती। मुक्तिबोध का काव्य एक बड़ा कैनवस है जो विविध आकारों तथा रंगों से भरा हुआ है। उन्होंने कलात्मक सुविधा को ख्याल में रखते हुए उसे कई जीवंत टुकड़ों में बांट दिया, किंतु हर खंड में मूल बृहत्तर कैनवस के कुछ अंश रह ही गए। इन खंडों को पहचानना होता है, आपस में इन्हें जोड़ना होता है और तब शायद उस बृहत्तर कैनवस का एक भव्य आभास होने लगता है। मुक्तिबोध की कविताओं में एक विराटकाय रहस्य पुरुष अनेक बार प्रकट हुआ है। अंधेरे में का प्रारंभ इसी कोई एक के कमरों में चक्कर लगाने से होता है। इस अज्ञात के विषय में कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। कमरे के पलस्तर की पपड़ियां गिरती हैं और वहां एक बड़ा चेहरा बन जाता है जिसकी नासिका नुकीली, हनुदृढ़ तथा ललाट भव्य है। फिर यही चेहरा जल में भी दिख पड़ता है। कोष्ठक शुरू होता है। चंबल की घाटी में आदि रचनाओं में भी चीजों के अचानक चेहरों में परिवर्तन हो जाने के उदाहरण है। कोष्ठक बंद। और आखिरकार सशरीर समक्ष आ जाता है, किंतु इस साक्षात्कार के पहले वन वृक्षों की शाखाएं, डालियां झूम झपट कर एक दूसरे पर पटकती हैं सिर, और ऐसा ही विप्लव दृश्य चकमक की चिंगारियां में भी है, जबकि बाहर के पहाड़ी पेड़ जड़ में जम भयानक नाच नाचने लग जाते हैं। पेड़ों के इस प्रलयवत नर्तन के पश्चात छिपी हुई एक तिलिस्मी खोह का शिलाद्वार खुलता है धड़ से। मेरे सहचर मित्र में भी अकस्मात जबरन धक्के से शिलाद्वार, वह गुहा द्वार आत्मा का धड़ से खुलता है। इस विराट स्वरूप से मुकाबला गहरे लाल रंग में डूबे हुए वातावरण में होता है। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर्तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। मुझे याद आते हैं कि निहाई से उठती हुई लाल लाल अंगारी तारिकाएं बसती हैं जिसके उजाले में कि एक अति भव्य देह प्रचंड पुरुष श्याम मुझे दीख पड़ता है। पता नहीं में होता है प्रकट एक वह शक्ति पुरुष जो दोनों हाथों आसमान थामता हुआ आता समीप अत्यंत निकट। यही शक्ति पुरुष एक स्वप्न कथा में सागर की थाहों में पैर टिका देता है। सागर का पानी सिर्फ उसके घुटने तक है, पर्वत सा मुखमंडल आसमान छूता है, अनगिनत ग्रह तारे चमक रहे कंधों पर। किंतु अंतर कथा से अब तक दूर से ही दिखने वाला यह रौद्राकार कंधों पर खड़ा हुआ है, थामता नभस दोनों हाथों से, भारान्वित मेरी पीठ बहुत झुकती जाती, वह कुचल रही है मुझे देव आकृति। इस दुर्धर देव के तकाजे बहुत कठिन हैं। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, सोचने स्थिति में ही छोड़ देता है मुझको, कहता है पर्वत संधि के गहवर रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। एक अंतर कथा में आकार वही है, किंतु प्रोटेगनिस्ट की आत्मीयता उसके विषय में कहती है, मैं जन्मा जब से इस साले ने कष्ट दिया, उल्लू का पट्टा कंधे पर है खड़ा हुआ, और आदेश भी वैसे ही है, बिल्कुल जगे रहो, तुम दांव अड़ाओ तने रहो। यह और बात है कि दोनों बार प्रोटेगनिस्ट पलायनवादी है और उसका यह आदेश मानना उस पर भारी है। जब यह देव हार कर दृश्य हो जाता है तब वह उठता है, किंतु पाता है कि बाहर कोई नहीं है, केवल रात का पक्षी चीखता है, वह चला गया है। उसको तो खोज, अब उसका तो शोध कर। जिस तरह एक स्वप्न कथा में यक्षिणियां कहती है, सहस्रों वर्षों से यह सागर उफनता आया है, उसका तुम भाष्य करो, उसका व्याख्यान करो। इस रहस्य पुरुष की एक मुद्रा और भी है, शांत मुद्रा, जिसमें वह गंभीर इतिहास अध्येता तथा लेखक दोनों है। एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन में रहस्य पुरुष छायाएं इतिहास लिखती हैं तथा मेरे सहचर मित्र में रक्ताभ दिए की लाल वलयशाली ज्योति के नीचे कालांतर अनुभव ग्रंथ देश देशांतर के पाता हुआ कोई जात वेदस उदंड क्रांतदर्शी आजानुबाहु पत्थर कुर्सी पर बैठा हुआ है। इस दुर्धर देव के अंतर्हित होने के बाद रात गहरी होती है और मन में जागता है किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, तथा यही अंदेशा चंबल की घाटी में विद्यमान है, बियावान रात जरूर कहीं होगी, आज वारदात भयानक बात। किंतु जबकि चंबल की घाटी में की यह भयानक बात कोई छाया रूप नकाब पोष के दिखने से प्रारंभ होती है, अंधेरे में कि उपयुक्त पंक्तियों के बाद विचित्र जुलूस दृष्टिगोचर होता है, जिसमें शरीक लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। एक स्वप्न कथा में भी एक जुलूस है जिसमें चेहरों के चौखटे अलग अलग तरह के अजीब हैं, मुश्किल है जानना, पर कई निज के स्वयं के ही पहचान वालों का भान होता है। जुलूस के ये चेहरे मेरे जाने बूझे लगते उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। उनमें कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कविगण मंत्री भी उद्योगपति और विद्वान भी थे, जैसे कि एक स्वप्न कथा के जुलूस में अनेक मुख नेता और विक्रेता अफसर और कलाकार, अनगिन चरित्र पर चरितव्य कहीं नहीं, अनगिनत श्रेष्ठों की रूप आकृतियां रिक्त प्रकृतियां मात्र की महत्ता निराकार देवलता दिखाई देती है। मुझे याद आते हैं मैं काव्य नायक पहले ही संस्कृत के सुवासित वस्त्रों के अंदर का वासी वह नग्न अति बर्बर देह देख चुका है, किंतु भय अब हुआ है। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। शहर में मार्शल ला लगा हुआ है, बलवे अग्निकांड गोलाबारी हो रहे हैं, किंतु इस जुलूस में सम्मिलित सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। जिस तरह भूल गलती के सामने पेश किए गए ईमान की उपस्थिति में सब खामोश, मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली इब्न सिन्ना अल बरूनी आलिमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश। यही अंतःकरण का आयतन के नगर बेबीलोन के प्रतिष्ठित राज्य संस्कृति के प्रभावी दृश्य, सुंदर सभ्यता के तुंग स्वर्ण कलश, सब आदर्श उनके भाष्यकर्ता ज्ञानवान महर्षि ज्योतिर्विद गणित शास्त्री विचारक कवि हैं जो याद आते हैं। इन्हें नंगा देख लेने से भयभीत होकर काव्य नायक भागता है और देखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद, सभी उपेक्षितों समस्त वंचितों गरीबों का वही घर वही छत, जिसे अन्य रचनाओं के अतिरिक्त कल जो हमने चर्चा की थी में सामने हमने देखा युगांतकारी आस्थाओं का विशाल भव्य अक्षयवट, जिसकी छाया तले वेगवान पीड़ा की कन्या खड़ी हुई है। इस पेड़ के नीचे रहने वाले पागल के गीत का प्रभाव कुछ यूं हुआ है कि मैं खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष, स्वयं के होने लगी बहस, लगने लगे परस्पर तमाचे। चंबल की घाटी में के सवालों के ढूह जब सामने खड़े होते हैं तब भी अपने ही गोरे गोरे हाथों को खूब मार बैठते हैं, अपने ही काले काले हाथ, क्योंकि मेरे ही कारण लग गया मार्शल लाव है, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने ही संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। और यही आत्मभर्त्सना चंबल की घाटी में उभरती है दस्यु प्राकरण पराक्रम शोषण पाप का परंपराक्रम वक्षासीन है, जिससे जिसके की होने में गहरा अंशदान स्वयं तुम्हारा, उसको बढ़ाने में तुम्हारा भी योग है। यह आत्मालोचन समाप्त हो कि एकाएक ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की? इस तरह चकमक की चिंगारियां के गुजरते चांद ने लिफाफा एक नीला दूर से फेंक दिया था और किसी ने बहुत आतुर हो उसे फिर फिर पढ़ा था। आगे स्वयं प्रोटेगनिस्ट गिरता है चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की। इशारा पाने के बाद पुनः पलायन प्रारंभ होता है। कहीं छिप बैठने का मौका है कि स्वप्न में स्वप्न दिखता है जिसमें दीप्त हो रही हैं मणियां, जो दीप्ति में वलयित रत्न नहीं है वरन अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं, जो ओ काव्यात्मन फणिधर के चुपचाप धसाए गए छिपाए गए रत्न मन के जन के मूल्य सत्य इस जग के परिवर्तन में हैं। पछतावा है कि मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया, क्योंकि काव्यात्मन फणिधर के लिए वे बहुत असुविधाजनक थे, इसलिए कि उनसे होता था पट परिवर्तन यवनिका पतन मन में जग में। पुनः आसपास की भयावह स्थिति का आभास होता है कि चारों ओर बूढ़े असंभव पक्षी तेज निगाहों से टोह ले रहे हैं, जो मेरे सहचर मित्र में सामाजिक जंगल के घुघु चकमक की चिंगारियां में उग्र जंगली आंख वाले समुद्री पक्षी इस चौड़े ऊंचे टीले पर के चमकती सावधान आंखों से देख रहे बूढ़े पंछी तथा चंबल की घाटी में के दानवी किसी बदनीयत के सावधान गिद्ध हैं, जिन्हें देख कुर्राट निगाहें याद आती हैं। पहरेदारों तथा टैंकों से बचकर भागता हुआ काव्य नायक जैसे ही तिलक की प्रतिमा के पास आता है, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती है, कण कण कांप रहे जिनमें के झरते नीले इलेक्ट्रॉन मूर्ति के तन से झरते हैं, अंगार मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, डूबता चांद कब डूबेगा, ये प्राचीन योद्धा की मूर्ति भी हिलती दिखाई देती है। देखता हूँ कि चल रही सांस, वे होठ हिले वे होठ हंसे, द्वितीय पुरुष में गांधी जब शिशु सौंप कर अदृश्य हो जाते हैं और कहते हैं कि संभालना इसको सुरक्षित रखना, तब डूबता चांद कब डूबेगा का आत्मा रूपी माता का त्यागा हुआ जीवन का आत्मज सत्य स्मरण हो जाता है, जो अनुभव बालक है तथा जिसे गोद में उठाए काव्य नायक खुश खुश घर लौटा था। सहसा शिशु रोता है और यह रुदन अतिशय परिचित है, पहले भी कहीं कई बार कहीं तो सुना था। एक अंतरकथा में भी प्रोटेगनिस्ट का विचित्र अनुभव है। सिर पर की टोकरी विवर में मानव शिशु शिशु वह कोई सद्योजात मृदुल कर्कश स्वर में रो रहा, सच प्यार उमड़ आता उस पर, किंतु शिशु स्वर में शिकायत गहरी है, भयंकर क्रोध है, और पुचकारने दुलारने पर भी वह चीखता है। वह शिकायतों से भरा बाल स्वर मंडराता, प्रिय बालक दुर्भर दुर्धर है, यह शिशु कौन है? वह है मानव परंपरा, चिघाड़ता हुआ उत्तर यह, और इसीलिए बहुत खुश खुश बहुत हूँ जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। यह शिशु अदृश्य होता है, सूर्यमुखी पुष्प उसका स्थान लेते हैं, उनकी जगह कंधे पर राइफल होती है और काव्य नायक के कमरे में पहुंचता है, जिसमें वह इस चौड़े ऊंचे टीले पर मैं पहले भी आया था, मैंने यह कमरा देखा है। पहली बार प्रश्न था, यह कौन यहाँ जो लेटी है, मृत आकृति, पीली जड़ीभूत, किंतु अब इस कमरे के बीच में जमीन पर पसरा फैलाए बाहें, जो ढह पड़ा आखिर वह कलाकार था, गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, हृदय में स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था वह किसी को दे न पाया था। इस चौड़े ऊंचे टीले पर में प्रश्न है, दिन रातें हैं जिसके तीव्र दृष्टि से विवेचिता, पल क्षण जिसके भाष्यों से जीवन के सृष्टा, जीवन जिसकी प्रेरणा व्यथा का वाहक था, उसकी महिमा अब भिला गई, किसने उसकी हत्या कर दी, उत्तर अंधेरे में प्राप्त है। वह अचानक झोंक में कुछ कर बैठा और संदेहास्पद समझा गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह मर गया एक युग, मर गया एक जीवन आदर्श। इस कमरे में वह उतरा ही था कि सहसा घेर लिया गया तथा आताई सत्ता के सम्मुख भूल गलती के सामने कैद कर लाया गया, ईमान प्रस्तुत किया गया, फिर चांटे से कनपटी टूटी कि अचानक त्वचा उखड़ गई, गाल की पूरी, कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन। यह पहले भी हुआ है, चकमक की चिंगारियां में सहसा कनपटी पर जोर से आघात, आंखों सामने विस्फोट होता है तथा इस चौड़े ऊंचे टीले पर में मानो की कनपटी पर अनपेक्षित अकस्मात आघात की थप्पड़ है, मस्तक की छत फूटने लगी, अपनी छाती पीटता हुआ नाद अनहद सिर में भटका, उसके पश्चात शुरू होती है बाकायदा थर्ड डिग्री, और मैं सुनता हूँ कि चिढ़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज़, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरली। यह आवाज़ निसंदेह इस चौड़े ऊंचे टीले पर के उस बड़े अफसर की है जिसकी सत्ता है, जो कमरों और पर्दों के पीछे सबसे अंदर ठीक केंद्र में बैठा है, जिसका आतंक बहुत है, किंतु यह अत्याचार विफल होता है, उसे रिहा कर दिया जाता है, और वह देखता है कि मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए, मेरे ही रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग, किंतु उसे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वो काव्यात्मन फणिधर में स्थिति पहले ही स्पष्ट है। शोक मत करो नागात्मन, आ गए तुम्हारी अनुपस्थिति में लोग, प्रतीक्षा जिनकी थी, ले गए ज्वलंत द्युति प्रस्तर धन, अब उन रत्नों का अर्थ दीप्त होगा, उनका प्रकाश घर घर पहुंचेगा फिर से। प्रकाश पहुंचता है, विप्लव होता है, कहीं आग लगती है, कहीं गोली चलती है, मकानों की छत से गार्डर कूद पड़े धम से, घूम उठे खंभे, भयानक वेग से चल पड़े हवा में, चकमक की चिंगारियां में बिल्डिंग गूंजती है, कांप जाती है, दीवालें ले रही आलाप, उखड़ते चौखटों में ही खड़ाखड़ खिड़कियां नचती, अत्याचार की सरकार बर्खास्त हो चुकी है और सड़कों पर भीड़ तथा सरकारी फौजों के बीच मुठभेड़ें हो रही है, जिनमें एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है जो शून्याकाश से होते हुए अरि पर अनिवार्य टूटते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर, जो जब प्रश्नचिन्ह बौखला उठे, मेह अग्नि विश्वजीत फैली है जिन लोगों की, वे नौजवान हैं। स्वप्न टूटता है, चित्र बिखर गए हैं, कवि अकेला है। स्वप्न स्मरण आता है, जैसे कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो। वह अज्ञात प्रणयनी कौन थी, कौन थी? वह प्रेमिका चकमक की चिंगारियां की जनसंग उष्मा है, महत संभावनाओं की उजलती एक रेखा, जिसका श्याम भोला मुख बहुत प्यारा मुझे दिखता कि पाता हूँ, मुझे ही देखती रहती, मनो आकार चित्रा वह सुनित्रा है। यह वास्तव में सौभाग्य का विषय है कि यह बात प्रमाणिक सत्य है कि अंधेरे में मुक्तिबोध की अंतिम रचना है। यह भी कोई संयोग नहीं है कि यह उनकी सबसे लंबी कविता है। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि उन्हें इसका आभास था कि यह उनकी अंतिम कविता होगी। नहीं होती कहीं भी खत्म कविता, नहीं होती। किंतु यह सोचने की इच्छा होती है कि इस कविता में मुक्तिबोध एक समिंग अप कर रहे थे। अपनी पिछली कविताओं में निसंदेह उन्हें ऐसी सामग्री बिखरी हुई दीख पड़ी जिसे एक महाकाव्यवत अभिव्यक्ति देना आवश्यक लगा होगा। उस सामग्री का अर्थ क्या है तथा इसके पीछे कौन सी प्रेरणाएं कार्यरत हैं, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ अभिष्ट नहीं है। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि मुक्तिबोध की इस रचना को अकेले देखना परखना उचित नहीं है, बल्कि खतरनाक है, क्योंकि उससे संबद्ध कई प्रश्नों का उत्तर हमें अन्य कविताओं में या इनके सहारे प्राप्त होता है। उन अध्येताओं को जो एक एक कविता को पकड़कर चलते हैं, मुक्तिबोध की स्वतंत्र कविताओं से जो हासिल होगा वह अधिक नहीं होगा। इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं कि अंधेरे में एक स्वतंत्र कविता होते हुए भी एक स्ट्रेटिफिकेशन स्तर बहुल रचना है, और उसका सही मूल्यांकन मुक्तिबोध की अन्य कविताओं को समानांतर रखकर ही संभव है। समाप्त।